दुनिया के युद्ध, इसके झगड़े और इसकी सारी पीड़ा सिर्फ एक ही हस्ती की लड़ाई से पैदा होती है, ईश्वर। फिर भी वह खुदा जिसकी 99% दुनिया प्रार्थना करती है, जिसके लिए लड़ती है और जिसके नाम पर दान देती है, वह पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी है, एक नकली जीव जो कल्पना, अनुमान और भ्रम से पैदा हुआ है। ये एपिसोड सीधे तौर पर तुम्हें ये पूछने की चुनौती देता है, जब तुम दुआ मांगते हो तो असल में सुन कौन रहा है? जब तुम खुदा की खुशी के लिए खैरात देते हो तो चेक कैश कौन करता है? हमारा तर्क है कि रूहानियत के साथ तुम्हारे कनेक्शन को हाईजैक कर लिया गया है। जो खुदा तुम्हें अपने माँ बाप से विरासत में मिला है, वह एक ट्रांसफ़र किया हुआ खुदा है, जिसे बिना जांचे डाउनलोड कर लिया गया है। और जो प्रार्थनाएं तुम भेज रहे हो, वे ट्रांसमिशन में खो रही हैं, क्योंकि वह उस पते पर है ही नहीं जो तुम्हें दिया गया है। ये एक हस्तक्षेप है। रीस्टार्ट, यहाँ उस बहरूपीय खुदा को मारने और तुम्हें सूफियों के खुदा से मिलवाने आया है रूमी, सादी और 73वें रास्ते का खुदा। यह वह हस्ती नहीं है जिसे तुम रस्मों रिवाजों से खुश कर सको, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे तुम केवल खोजबीन से ही पा सकते हो। हम खुलासा करते हैं कि उस असली रूहानी ताकत से जुड़ने का एकमात्र रास्ता एक इंसान, एक कामिल के ज़रिए है, एक रूहानी डाकिया जो सही पता जानता है और तुम्हारी आत्मा का संदेश पहुंचा सकता है। यह प्रोग्राम तुम्हारी हकीकत को फिर से इंजीनियर करेगा, ये साबित करके कि किसी भी धर्म का पालन करने से पहले तुम्हें पहले असली खुदा को खोजना होगा। इससे कम कुछ भी करना सिर्फ एक मूर्ति की पूजा है। खैर प्यारे श्रोताओं, कैलिफोर्निया के रेडियो पास्तों से 11:14 हैं और अब तक हमने रीस्टार्ट के 7 एपिसोड आप तक पहुंचाए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि रीस्टार्ट की यह फिक्र और सोचने की यह चिंता कई लोगों के दिमाग में है और मेरे लिए ये बहुत कीमती है। लेकिन असल में रीस्टार्ट है क्या, या ये प्रोग्राम रीस्टार्ट क्या है? दुनिया मूल रूप से 3 हिस्सों में बटी हुई है, माननीय श्रोता, ताकि आप समझ सकें कि रीस्टार्ट का पूरा विषय क्या है। धार्मिक लोग, जो एक तरह से दुनिया का लगभग 89% हिस्सा हैं, बाकी यानी 10% नास्तिक और उनके जैसे लोग हैं, और 1% का हजारवां हिस्सा रूहानियत में है। अगर कान वही हैं जो तुम्हारे हैं और फरियाद वही है जो मेरी है, तो जो चीज़ कहीं नहीं पहुंचेगी वह है मेरा शोर। और यह 1% का हजारवां हिस्सा जो कुछ भी कहता है, वह किसी के पल्ले नहीं पड़ता। ईसा मसीह अपने रीस्टार्ट के लिए जहन्नुम से गुजरे और पीटर भी। मूसा को रीस्टार्ट प्रोग्राम की वजह से बार बार ड्रैगन, अजदहा निकालने पड़े ताकि शायद लोग समझ जाएं। बदकिस्मती से वे नहीं समझे। जो लोग हेगेल को पढ़ते हैं, जो नीचे में विश्वास रखते हैं, उन पर यह लाजिम है कि वे इस प्रोग्राम को सुने। रूमी उन नास्तिकों को पूरा हक देते हैं जो धर्मों के खुदाओं का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि रूमी का मानना है कि मजहबी लोगों का खुदा और नास्तिकों की नास्तिकता बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि विचारशील नास्तिकों ने सोच विचार के जरिए यह महसूस कर लिया है कि मजहबी लोगों के खुदा में एक खोट है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति यह नहीं समझा सकता कि एक बच्चा पैदा होने के बाद क्यों मर जाता है या दोषों के साथ क्यों पैदा होता है, और ऐसे कई अन्य सवाल जिनका जवाब वे नहीं दे सकते, क्योंकि इन सवालों का जवाब केवल रूहानियत और सूफीवाद में है। 73वां रास्ता वह रास्ता है जो रूमी दिखाते हैं, हाफिज दिखाते हैं, सादी दिखाते हैं। ये 73वां रास्ता खुदा के बारे में है। ध्यान दें, कम से कम 8,000 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 साल और निश्चित रूप से 3,000 से 4,000 साल एक स्पष्ट मोड़ पर, यानी जो किताबें सामने आई हैं, हर किसी की लड़ाई ईश्वर खुदा नाम की एक हस्ती पर है। यही हमारे रीस्टार्ट की पूरी लड़ाई है। दुनिया की लड़ाई बुनियादी तौर पर खुदा पर है। देखो, तुम ईसाई मध्य युग के दौरान देखते हो, हम देखते हैं कि चर्च के नेता एक खुदा को परिभाषित करते हैं और नास्तिक उनके खुदा को कुचल देते हैं। एक बहुत छोटा समूह दूसरे खुदा को परिभाषित करता है जिसे कोई सुनता ही नहीं। लड़ाई सारी की सारी खुदा के बारे में है।
मतलब अगर तुम खुदा को हटा दो तो तुम पूरा रीस्टार्ट प्रोग्राम समेट सकते हो, क्योंकि यूएफओ और आत्माएं और वह सब जो उस दूसरी तरफ से आ रहे हैं, ये सब इस प्रोग्राम के पीछे है। जब तुम खुदा को हटा देते हो तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं रहता, किसी का किसी और से कोई झगड़ा नहीं है, माशाल्लाह।
मतलब
अगर दुनिया एक दिन नास्तिकता का कानून बना दे, जैसा कि हुसैनी कहेगा, सर चलो खुदा को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं, आज रात खुदा, जैसा कि नीत्शे कहता है, सो रहा है, उसे मत जगाओ, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि नास्तिकों और धार्मिक लोगों का नज़रिया एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं है। सादी एक ऐसे खुदा को समझाते हैं जिसका सादी के रास्ते पर चलने वाला कोई भी धार्मिक व्यक्ति पालन नहीं करता। रूमी एक ऐसे खुदा को समझाते हैं जिससे दुनिया का कोई भी धार्मिक व्यक्ति सहमत नहीं है, और हाफिज़ का भी यही हाल है। रीस्टार्ट का काम थोड़ा बहुत ये समझाना है, सर रूमी खुदा के बारे में क्या सोचते हैं, सादी का खुदा कौन है, यही इस रीस्टार्ट का नाम है, सर ये इनका विश्वास है, इस व्यक्ति का एक विश्वास है, सादी का खुदा कौन है, धार्मिक व्यक्ति का खुदा कौन है, नास्तिकों का खुदा कौन है, नास्तिकों का खुद का एक खुदा है जिसका नाम नास्तिकता है, मतलब वे इसे प्रकृति या जो भी कहते हैं, वह उनके लिए भी अच्छा है, रूहानियत को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, हमने पहले भी कहा है, साक्षरता ट्रांसफ़र की जा सकती है। देखो तुम यूनिवर्सिटी जाते हो, एक प्रोफेसर आता है और इसे तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता है, तुम इसे इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में डाल देते हो, एक किताब हाफिज़ की किताब डाउनलोड करो और इसमें डाल दो, ना तो ये बेवकूफ़ कंप्यूटर कुछ समझता है ना वह बेवकूफ़ कंप्यूटर, मतलब अगर पहला कंप्यूटर ईसाई है, दूसरा कंप्यूटर मुस्लिम है, तीसरा कंप्यूटर पारसी है, चौथा, उनमें हाफिज़ को डाउनलोड करते रहो, कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका नज़रिया अलग है। तो जनाब सादी का खुदा के बारे में क्या नज़रिया था? मैंने इसे गुड नाइट ईरान के एक प्रोग्राम में बहुत संक्षेप में समझाया था। सादी का खुदा एक ऐसा खुदा है जो कहता है, ऐ वो जो ख्याल कयास गुमान और वहम से परे ऊंचा है और उस सब से भी परे जो हमने कहा सुना और पढ़ा है। मतलब जनाब सादी मूल रूप से 7 या 8 महत्वपूर्ण चीज़ों पर हक देते हैं, वह अच्छे विचार से लेकर अच्छे कर्म और अच्छे वचन तक हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं, और कहाँ तक, दुनिया के लोगों के सारे विचारों तक। वह कहते हैं जो कोई भी खुदा को समझता है, मेरा मतलब है बिल्कुल वही शब्द खुदा, वह उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं जो खुदा को समझता है, जिसे उस सत्य के राज सिखाए गए, उन्होंने अपने होंठ सील लिए और अपना मुंह बंद कर लिया। सादी इसे दूसरे तरीके से कहते हैं, बहुत ही शालीनता और सरलता से, ये दावेदार उसकी तलाश में बिल्कुल बेखबर हैं, क्योंकि जिसे खबर मिली उसकी फिर कोई खबर वापस नहीं आई। वह कहते हैं ये दावेदार, मतलब दुनिया की 99.99% आबादी, ये दावेदार उसकी तलाश में, यानी खुदा की तलाश में बेखबर हैं, उनके पास कोई खबर नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जिसे खबर मिली उसकी फिर कोई खबर वापस नहीं आई, जो सूचित हो जाता है वह समझाने के लिए वापस नहीं आता। इसका मतलब है कि यह ट्रांसफ़र करने योग्य नहीं है, मतलब रूहानियत का समुद्र एक निजी समुद्र है। इसीलिए हल्लाज कहते हैं कि खुदा तक जाने के रास्ते उतने ही हैं जितनी इंसानों की रूहें हैं, ये नहीं कि इतने सारे रास्ते हैं। इसका मतलब है कि एक रास्ता मौजूद है जिसे तुम हुसैनी में डाउनलोड करते हो, और ये हुसैनी को एक तरह से गड़बड़ा देता है, तुम इसे अपने अंदर डाउनलोड करते हो और खुदा तुम्हारे अंदर दूसरे तरीके से उभरता है। और एक दिन रीस्टार्ट प्रोग्राम मिस्टर शम्स मिस्टर रूमी को समझाते हैं और रूमी को उड़ा देते हैं, मतलब रूमी के कद का आदमी उस महान ज्ञान के साथ खुद को ज्ञान से खाली करता है और एक अलग इश्क और सोचने के एक अलग तरीके में दाखिल होता है। तो माणिकियों और पारसियों और मजदकियों और बौद्धों और हिंदुओं और मुसलमानों और ईसाइयों और उन सभी से लेकर नीत्शे और मार्क्स और पता नहीं कौन हेगेलिस्ट और ऊपर नीचे जाओ, वे सब बाध्य हैं, कम से कम अगर तुम ईरानी हो या फारसी बोलने वाले हो। अफगान अब इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं या अन्य जगहों के लोग, कोई भी जो फारसी बोल सकता है वह सादी और हाफिज़ को देख सकता है। तुम देखो, तुम्हारे सभी घरों में हाफिज़ की एक किताब है, तुमने यह समझने के लिए इसे एक बार भी नहीं खोला कि यह क्या कह रहा है। इसका मतलब है कि हम हाफिज़ और रूमी की सोच के बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और फिर हम अपना सिर हिलाते हैं जबकि हाफिज़ और रूमी से एक भी चीज़ नहीं समझते, तो रूहानियत का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये रूमी की पूरी सोच है, ये रूमी का पूरा मुद्दा है।
वह कहते हैं, सर खुदा की कसम, एक ऐसा खुदा मौजूद है जिसे तुम नहीं जानते। हम इस रीस्टार्ट प्रोग्राम में, मतलब मैं तुच्छ प्राणी एक तोते की तरह थोड़ा समझा रहा हूँ, चूँकि मेरे पास खुद कोई ज्ञान या कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें रूमी और अत्तार और सादी के खुदा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा समझा रहा हूँ। हमने रूमी की एक कविता भी खोली जिसे तुम गूगल पर खोज सकते हो, हाथी अंधेरे घर में था, और अगर तुम इसे खोजोगे तो 120-130 शेरों की एक कविता सामने आएगी। हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तुम इसे व्याख्या भी नहीं कह सकते क्योंकि साला हर उल्लू के पट्टे ने आकर हमें एक व्याख्या दे दी है। तुम इसे व्याख्या नहीं कह सकते, मतलब हम इसे समझा रहे हैं, वह बेहतर है, क्योंकि फिर व्याख्या शब्द पर सवाल उठाए जाते हैं और मुझ पर खुद सवाल उठाए जाते हैं। कारण ये है कि देखो, शेख बहाए कहते हैं, रूमी की मसनवी मानवी पहलवी फारसी जबान में कुरान है। मैं ये नहीं कहता कि वह हस्ती रूमी कोई पैगंबर हैं, मगर उनके पास एक किताब है। अब अगर मैंने इसे गलत क्रम में सुनाया है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। शेख भाई रूमी के बारे में इस तरह बात करते हैं, वह कहते हैं कि इस आदमी ने एक ऐसी किताब तैयार की है कि अगर हम कहते कि वह एक पैगंबर थे तो हम गलत नहीं होते। अब उन्होंने यह भी कहा, मैं ये नहीं कहता कि वह पैगंबर हैं क्योंकि वे कट्टरपंथी, उन्हें सुबह मार डालेंगे, वह डरे हुए हैं। अब हम 2-3 शेरों तक पहुँचे। दम मत मारो, सांस मत लो, ताकि तुम उन सांस लेने वालों से वह सुन सको जो न जबान में आया है और न बयान में। दम मत मारो ताकि तुम उस सूरज से सुन सको जो न किताबों में आया है और न बातों में। दम मत मारो ताकि रूह तुम्हारे लिए दम भरे। हम इस बिंदु तक पहुँचे और हम रुक गए हैं। क्यों? जब हम किताबों और अभिव्यक्ति और इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमारे पास उनके बारे में बात करने के लिए अपनी विशिष्ट परिभाषाएं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से यह अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बाद में हम इस कविता को जारी रखेंगे क्योंकि यह एक ऐसे बिंदु पर पहुँचती है जहाँ रूमी इस कविता में पूरी तरह से खुदा पर एक खास नज़रिए से सवाल उठाते हैं और एक तरह के खुदा को समझाते हैं जो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हमें यह समय के साथ करना होगा। पिछले हफ्ते हमने इंसान कामिल को समझाया और कहा कि दुनिया के जीवों की रूह उस कामिल इंसान के हाथों में है। हमने इसे भी एक हद तक समझाया,
लेकिन इस बात को कौन खत्म करे कि खुदा पर लड़ाई बंद होनी चाहिए, यह किताबों में या बातों में नहीं कहा जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब हमने खुदा के बारे में बात क्यों की? क्योंकि जब तुम रूह पर आते हो तो तुम्हें रूह को समझाना पड़ता है। जब तुम रूह को समझाना चाहते हो तो तुम अत्तार और रूमी और दूसरों की कविताओं में देखते हो रूह एक बड़े अस्तित्व का एक छोटा हिस्सा एक्स है। मतलब जब तुम रूह को समझाना चाहते हो तो तुम्हें पहले आना होगा और इस बड़े अस्तित्व को समझाना होगा, मतलब इस हिस्से से हमें पूर्ण तक पहुंचना होगा या हमें पूर्ण को समझाना होगा। इसी कविता के पहले शेरों के अनुसार पूर्ण को समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह एक हाथी है और तुमने देखा कि अंधेरे घर में इसे समझाना मुश्किल है। रोशनी होनी चाहिए। जब रोशनी आई, मतलब जब चिराग आया, जब किसी व्यक्ति को मानसिक मार्गदर्शन मिला या सूफीवाद तक पहुंचा, तो जब यह व्यक्ति सूफी बन गया तो वह अब हर किसी को सब कुछ नहीं समझा सकता क्योंकि यह खतरनाक है। फिर हम धर्म पर आते हैं। सच में अपने लिए सोचो, सच में। अब हम मान लेते हैं। अब मैं हमारे लिए खुदा के इन संकेतकों को समझाना चाहता हूँ। वैसे खुदा है कौन? इस खुदा का व्यक्तित्व कैसा है? क्या तुम जानते हो कि हमें इस खुदा को क्यों समझाना है? क्योंकि अभी 89% धार्मिक लोग कहीं पैसा देने की कोशिश करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, वे नमाज पढ़ते हैं, वे रोज़ा रखते हैं, वे खुम्स धार्मिक टैक्स देते हैं, वे जकात खैरात देते हैं, वे अच्छे काम करते हैं। वे ये काम क्या करने के लिए करते हैं? खुदा को खुश करने के लिए। अब अगर यह खुदा फलां फलां जगह पैसा देने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब मान लो तुमने एक गरीब आदमी को देखा और उसे कुछ पैसे दिए,
हम पूछते हैं कि तुमने क्यों दिए, तुम कहते हो खुदा की खुशी के लिए। अब मुझे नहीं पता कि तुम खुदा की रजा के लिए दे रहे हो या खुदा के तगी के लिए या खुदा के कम्बोज के लिए, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम इसे खुदा की खुशी के लिए दे रहे हो तो तुम्हें खुशी और खुदा दोनों को जानना होगा। हम कहते हैं कि ये 89% प्रार्थना करते हैं, किसकी ओर? खुदा की ओर। अब क्या होगा अगर खुदा उनके पीछे है? वह कहाँ है? हमें क्या करना चाहिए? खुदा की खासियत ही यही है। मतलब अगर तुम सुनने वाले खुदा को नहीं जानते तो धर्म की सारी शाखाएं हवा में हैं। आज मेरा पूरा मुद्दा यही है। धर्म की शाखाएं क्या हैं? नमाज, रोज़ा, खुम्स, जकात, भलाई का आदेश देना, अमर बिल मरूफ, बुराई से रोकना, नहीं अनिल मुनकर, मुझे नहीं पता, तवल्ला, प्रेम, तबर्रा, दूरी, जो भी थे मैं भूल गया, अगर 10 थे या 9, जो भी हो। अगर तुम खुदा को नहीं जानते तो तवल्ला हवा में है, तबर्रा हवा में है। अगर तुम खुदा को नहीं जानते तो तुम्हारी नमाज हवा में है। तुम्हारी नमाज हवा में क्यों है? अगर तुम खुद 5 सेकंड के लिए सोचो तो तुम अपनी मुहर लगाओगे और कहोगे, मैं अपनी माँ की मौत की कसम खाता हूँ, मैं अब से रिस्टार्ट सुनूंगा, क्योंकि तुम्हें समझना होगा। अगर तुम 5 सेकंड के लिए सोचो, तुम खुदा की ओर नमाज पढ़ते हो, ये खुदा कौन है जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है? 1,00,000 साल की लड़ाई, ये सब एक दूसरे को मारना, एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाना, एक दूसरे को ऊपर भेजना, एक दूसरे को नीचे भेजना, और हर कोई एक खुदा को समझा रहा है और हर कोई उस खुदा का फ़ैन है। और फिर वे रूमी का दिमाग ख़राब कर देते हैं, रूमी आपा खो देते हैं, सादी आपा खो देते हैं, हाफिज आपा खो देते हैं, ख्वाजू करमानी आपा खो देते हैं, सगीर इस्फहानी, निजामी गंजवी, सनाई गजनवी आपा खो देते हैं। वह कहते हैं, तुम बेगैरत हरामजादों हमारे खुदा को बर्बाद मत करो, कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि हर कोई खुदा को परिभाषित कर रहा है। तू होता कौन है खुदा को परिभाषित करने वाला गधे? यार, तुम मूसा और खिजर की कहानी में जो मैंने समझाई थी, यजीद के दलदल में गले तक फंसे हुए हो, तुम क्या समझते हो गधे? वह अपने लिए बकवास करता है और खुदा को परिभाषित करता है। क्या इंसान एक कामिल के अलावा कोई और खुदा को परिभाषित कर सकता है? मूर्ख, दम मत मारो तुम बेअक्ल गधे, ताकि रूह तुम्हारे लिए दम भरे। मिस्टर इटालियन गधे जो वहाँ बैठकर थ्योरी झाड़ रहे हैं, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो रूह आएगी और तुमसे बात करेगी। यह रूह एक बड़े अस्तित्व का डीएक्स है। किस पाप के लिए तुम मारते हो और पीटते हो और जहन्नुम सामने लाते हो और लोगों को कहते हो कि आओ पैसे दो? किस खुदा के साथ? तुम्हारे खुदा का तर्जुमान कौन है? तुम्हारे खुदा की व्याख्या क्या है? तुम्हारे खुदा के पास क्या है? क्या उसके पास पैर है, कान है, हाथ है, पैर है? तुम इस खुदा को हमारे गले क्यों उतार रहे हो? रूमी ये कहने वाले हैं, मैंने एक शब्द नहीं कहा है। सादी कहते हैं, सर, वह खुदा जिसकी तुम पूजा करते हो और जिसे तुम सही मानते हो, और अपने इस खुदा की खातिर तुमने 10,000 सालों से सबसे पहले तो नास्तिकों की वाट लगा दी है, तुम ना तो नीत्शे को समझते हो और न ही हेगेल को। महान नास्तिक, क्या तुम्हें पता है कि नीत्शे का उस्ताद कौन था? माननीय श्रोता, वह हल्लास थे, उन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मिस्टर नीत्शे के उस्ताद, मतलब सबसे बड़े नास्तिक मिस्टर हल्लाज थे, एक महान सूफी जिसे उन्होंने मार मार कर भुड़ता बना दिया। क्यों? क्योंकि वे नहीं समझे कि वह क्या कह रहे थे। और अब नीत्शे और उनके जैसे लोग वास्तव में 1% एक अवधारणा समझा रहे हैं कि खैर, हमें अपने प्यारे दोस्तों को समझाना चाहिए कि नीत्शे क्या कहते हैं। उदाहरण के लिए, लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि नीत्शे क्या कहते हैं, क्योंकि तुम सब बन गए हो इस प्रकार, नीत्शे ने कहा, उस पर शांति हो। तुम इंटरनेट पर जाते हो, कुछ कौन सा खुदा मेरे प्यारे? ऐ वो जो ख्याल कयास गुमान और वहम से परे है। ख्याल कयास सुनो, गुमान सुनो यार, वहम और उस सबसे भी परे जो हमने देखा और सुना और पढ़ा है। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। कुरान एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। तुम्हें पता है, कभी कभी बेइज्जती मानसिक रूप से अकल्पनीय होती है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि यह मुश्किल है। तो तुमसे मेरा सवाल है, मिस्टर मुस्लिम, मिस्टर क्रिश्चियन, मिस्टर यहूदी, जो कोई भी, मिस्टर
पूरी पृथ्वी का 99%। क्या तुम्हारा खुदा वास्तव में काल्पनिक है या नहीं, क्या यह अनुमान पर आधारित है या नहीं, तुम बस मान लेते हो, है ना। जब तुम प्रार्थना करते हो तुम वास्तव में खुदा को नहीं देखते, तुम मान लेते हो कि खुदा तुम्हारे सामने है, और फिर अगर तुम अपनी आँखें बंद करते हो और उन्हें दबाते हो तो एक कालापन दिखाई देता है, और तुम अपनी कल्पना में एक खुदा की तस्वीर बनाते हो, और तुम्हारा भ्रम मेरे खुदा व बेलगाम हो जाता है। देखो, सोचो, तुम एक बिस्मिल्लाह कहते हो और तुम शब्बे कद्र नाइट ऑफ डिक्री, पर 1,00,000 बार कहो वह अल्लाह एक है सूरह इखलास करते हो। बस मुझे नहीं पता तुम नमाज पढ़ते हो तो उन्होंने 1,000 रकात नमाज पढ़ी है, ठीक है। खैर, तुम एक बार या अल्लाह कहते हो दुनिया पलट जानी चाहिए। अगर कोई अल्लाह मौजूद है तो जिस एक बार तुम उसे पुकारोगे वह मुड़ जाएगा। देखो, अगर वह नहीं मुड़ता तो तुम्हारा खुदा बहरा है यार। अभी सड़क पर जाओ और चिल्लाओ, सईद सईद, तुम्हारा चचेरा भाई। अभी घर में कहो मसूद, मसूद अगले कमरे से कहेगा हाँ। यार, अगर तुम खुदा को जानते हो तो वह एक पुकार पर मुड़ जाएगा। मैं तुम्हारी जान की कसम खाता हूँ वह मुड़ जाएगा, सिवाय इसके कि तुम्हारा खुदा एक गधा है या बहरा है या वह तुम्हारे घर में नहीं है। बेवकूफ़, वह कहीं और है, जहाँ तुम पूजा कर रहे हो खुदा वहाँ नहीं है प्यारे, वह कहीं और है। तुम कितनी भी बकबक कर लो वह नहीं सुनेगा कमबख्त। अपने बच्चे को बुलाने के लिए जिसे पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया है और जिसके सोचने के तरीके की मरम्मत की जा रही है, तुम घर से नहीं चिल्ला सकते क्योंकि इन आवाज़ों को हवा से गुजरने के लिए, आवाज़ को पुलिस स्टेशन में दाखिल होने के लिए, उस आदमी के कान में जाने के लिए, इसे विज्ञान कहते हैं, इसे विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रोग्राम में हुसैनी का सवाल ये है, तुम्हारा खुदा कौन है जिसे मुझे पैसे देने चाहिए? सच में सच में, कल सुबह मैं खैरात LMS देना चाहता हूँ, और किसी भी धर्म के लिए जिसका तुम नाम लो मैं खैरात देना चाहता हूँ। अभी मेरी जेब में कुल $5 हैं, मैं यह $5 खुदा को देना चाहता हूँ, खुदा की खुशी के लिए और खुदा के कम्बोज के लिए। मैं किसे दूँ? ये पैसा खुदा तक कौन पहुंचाता है? कौन सा छेद मौजूद है जिसमें मैं पैसा फेंक सकूं ताकि वह खुदा तक पहुंच जाए? मेरे कागज़ पर कौन मुहर लगाएगा कि खुदा को यह मिल गया? कौन सा कमीना बदमाश यह साबित कर सकता है कि जो पैसा मैं इस जगह या उस जगह दे रहा हूं वह खुदा के पास जा रहा है? रूमी के नज़रिए से कौन सा कमीना साबित कर सकता है कि जब मैं क़िबला की ओर मुँह करके खड़ा होता हूँ तो खुदा मुझे देखता है? कौन साबित कर सकता है कि अगर मैं रोज़ा रखूं तो मैं खुदा तक पहुंच जाऊंगा? अगर तुम 8 दिन तक नहीं खाते, मैं तुम्हें कसम खाता हूं, तुम्हारे पास ऐसे जीव आएंगे कि तुम समझ जाओगे। तुम अभी 4 दिनों के लिए पानी पीना बंद कर दो, देखो तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है। जब तुम नहीं खाते तो तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, तुम्हें थोड़ा चक्कर आता है, फिर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत रूहानी और नूरानी हो गए हो। नहीं, खुदा की कसम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा ताहिर व खुदा तक पहुंचते हैं। एक आशिक उस सड़क के बीच में किसी लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा, मेकिंग आउट है, वह खुदा तक पहुंचता है। मैं समंदर को देखता हूं तो समंदर में तू है। मैं रेगिस्तान सहरा को देखता हूं तो रेगिस्तान में तू है। जहाँ भी देखूँ पहाड़ और दरवाज़ा और मैदान, वहाँ तेरे ही खूबसूरत कद का निशान देखता हूँ। बाबा ताहिर उसे इन चीज़ों के बीच देखते हैं, रोजे के जरिए नहीं। रीस्टार्ट की लड़ाई ये है कि हम रूमी और सादी और हाफिज़ के विचारों को समझा रहे हैं, फिर जब तुम उनके खुदा को जान लोगे तो जो पैसा तुम अभी दुनिया में कहीं भी दे रहे हो, तुम्हें सूफीवाद या रूमी का दरवाज़ा खटखटाना होगा और ये पैसा देना होगा। तुम्हें अदब से खड़ा होना होगा और उसे देना होगा, मतलब पैसा उसे दो जो इसे खुदा तक पहुँचाएगा। अगर तुम पर हुसैनी का पैसा उधार है, अगर तुम्हारे पास नकद है, अगर तुम दरवाजे पर जाते हो और जो भी गुजरता है उससे कहते हो जाओ ये हुसैनी को दे दो, मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि यह मेरे हाथों तक नहीं पहुँचेगा। वह आदमी इसे ले लेगा और खर्च कर देगा। पैसा मेरे हाथों तक पहुँचने के लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए, तुम्हें यह चेक या ये पैसा हुसैनी के मेल बॉक्स में भेजना होगा। फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि डाकिया नाम का एक सूफ़ी इस पैसे को हम तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। रीस्टार्ट तुम्हें बताना चाहता है, अपनी नमाजों की भरपाई करो। ये रास्ता जिस पर तुम हो,
तुर्किस्तान जाता है। यार अगर तुम पैसा दे रहे हो, रीस्टार्ट तुम्हें दिखाना चाहता है कि तुम्हें पैसा किसे देना चाहिए ताकि वह खुदा तक पहुँचे। रीस्टार्ट तुम्हें खुदा से मिलवाना चाहता है, और जब तक तुम यह नहीं समझते कि खुदा तुम्हें चार बीवियां रखने पर पसंद करता है या एक बीवी या कोई बीवी नहीं, क्या ऐसे साधु नहीं हैं जो बिल्कुल शादी नहीं करते? तुम मुसलमानों की चार बीवियों पर अटके हुए हो या बेचारे ईसाइयों पर जो शादी नहीं करते, साधु और नन? तुम या तो इसकी आलोचना करते हो या उसकी। क्या खुदा को सच में इस बात से मज़ा आता है कि मैं कितनी बीवियाँ रखता हूँ? वह खुदा जिसने हमें ये छोटे औजार लिंग दिए, इन औजारों के लिए उसका क्या मकसद था? क्या इसका मकसद औजार का इस्तेमाल करना था या नहीं? क्या हो अगर खुदा का इरादा ये है कि तुम्हारे पास हर रोज़ एक नया औजार होना चाहिए? हमें कैसे पता ये तुम्हारा खुदा, ये तुम्हारा काल्पनिक अनुमानित और भ्रामक जीव जिसके बारे में तुमने सुना है, क्योंकि तुमने बस इसके बारे में सुना है, तुम्हारा धर्म एक ट्रांसफ़र किया हुआ धर्म है। मतलब यह तुम्हारे पिता से तुम तक पहुंचाया गया है, यह एक ट्रांसफ़र है। अब शायद चार मुस्लिम थे जो ईसाई बन गए, या ईसाई जो यहूदी बन गए, या यहूदी जो कुछ भी बन गए। यह धर्म जो तुम्हारे पास है वह ट्रांसफ़र किया हुआ है। तुम्हारी प्यारी सूरत पर लानत हो। मतलब यह इससे उस तक चला गया है, यह जांच पर आधारित नहीं है। जांच का क्या मतलब है? इसका मतलब है हक से हक को लेना। खोजी रूमी कहते हैं एक खोजी धर्म का मतलब है कि तुम्हारे और खुदा के बीच केवल एक ही हस्ती मौजूद हो सकती है जिसका नाम इंसान एकामिल है। तुम्हें हक से सच्चाई लेनी होगी। मतलब तुम सीधे खुदा के पास जाते हो और कहते हो मुझे मेरा हक दो, और खुदा कहता है ये लो तुम्हारा हक। हक से हक, उसने मस्जिद और मैखाने और मुझे नहीं पता क्या मकबरे और मठ और आराधनालय से हक नहीं कहा, उसने कहा हक से हक। मतलब तुम्हें पहले हक को देखना होगा, फिर हक से अपना हक लेना होगा। इसे जांच कहते हैं। जांच, सच्चाई केवल सत्य से लो।
रीस्टार्ट तुम्हारे खुदा को पूरी तरह से सिर के बल हवा में उल्टा लटका देगा। रीस्टार्ट तुम्हें एक नए खुदा से मिलवाएगा जिसका नाम 70/3 रास्ता है। रीस्टार्ट तुम्हें समझाएगा कि यह लड़ाई जो तुम देख रहे हो वह मुल्ला के कंबल मुलस ब्लैंकेट पर है, लेकिन कंबल के नीचे कोई और है। और रीस्टार्ट जबरदस्ती रूमी सादी हाफिज फिरदौसी और रूहानियत में दूसरों के विचारों को तुम्हारे गले के नीचे उतार देगा। ये विवादास्पद और खतरनाक प्रोग्राम, अगर हुसैनी की कोई जिंदगी बची है और ये प्रोग्राम जारी रहता है तो तुम किसी ऐसी चीज़ तक पहुंचोगे जिस पर तुम विश्वास नहीं करोगे। और याद रखना कि मैं खुद देखो हज़ार बार, मेरे पास कोई साक्षरता या समझ या ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस 14 से 15 साल की उम्र से रूमी और दूसरों की कुछ किताबें पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे एहसास हुआ कि वे एक बात कह रहे हैं, समाज में कुछ और है, इंटरनेट पर कुछ और है, और उनके कुछ दुश्मन भी हैं जो कुछ और कहते हैं। इस कारण से इस हफ्ते से अगले हफ्ते तक अगर तुम खैरात जकात और खुम्स धार्मिक टैक्स या किसी भी कारण से कहीं पैसा दे रहे हो, या तुम नमाज पढ़ रहे हो, या तुम बुराई से रोक रहे हो, या तुम भलाई का आदेश दे रहे हो, तो देखो ये भलाई का आदेश किस खुदा के आदेश से है? रूमी और अत्तार के खुदा के, या तुम्हारे अपने बेवकूफ़ बाप दादाओं के खुदा के, या दुनिया की सरकारों के खुदा के? कौन सा खुदा तुम्हें आदेश देता है? और रूमी की थ्योरी के अनुसार किस रूह ने तुम्हें भलाई का आदेश देने और बुराई से रोकने का आदेश दिया है? नमाज पढ़ने का सबसे खूबसूरत खुदा सिर्फ रूमी का खुदा है। मैं तुम्हें मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी बल्कि खुरासानी के खुदा को, शाह नेमतुल्लाह वली के खुदा को, सादी और हाफिज खाकानी अहमद गजाली के खुदा को, फिरदौसी और खय्याम के खुदा को, और जांच के खुदा को, न कि नकल के और विचार के खुदा को सौंपता हूं अगले हफ्ते तक। अलविदा। रीस्टार्ट एपिसोड 9। हम आपके समर्पित सेवक हैं। कोई भी जो हमारे 1000 लोगों के सिमुर्ग अभियान में भाग लेना चाहता है वह आ सकता है और शामिल हो सकता है। चाहे तुम्हारे पास $1 हो, $100 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि तुम हमारे साथ हो। हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितने साथी हैं। हम उन खूबसूरत लोगों को देखना चाहते हैं जो अलग हैं। हम 1000 अलग साथियों की तलाश कर रहे हैं जो कॉफ़ी शॉप्स में नहीं जाते, मतलब वे अपने पेट से काट कर, मेरे प्यारे, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वह लाजिमी तौर पर दिल पर बैठती है। तो मैं 1000 ऐसे साथियों की तलाश कर रहा हूँ जिनके पास अलग होने का गुर्दा है। मैं आपका समर्पित सेवक हूँ, आओ बन जाएं, एक दूसरे के साथी बन जाएं, आओ इश्क और महबूब की शुरुआत में जाएं और बीमार इश्क में हो जाएं। पहुँचने के लिए हमें एक आवाज़ बनना होगा, अंतिम मंजिल के साथ एक दिल और एक राजादार।